संसद की कार्यप्रणाली, फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की कार्यप्रणाली के संबंध में प्रत्येक व्यवस्था का वर्णन संविधान में नहीं है, बल्कि संविधान की धारा 118(1) के अधीन कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपने कार्य व्यवहार को चलाने के लिए संविधान की धाराओं को मुख्य रखकर नियम बना सकेगा। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट और इट्स बिजनेस आर्टिकल 118(1). इस धारा के अधीन प्राप्त शक्ति के अनुसार लोकसभा तथा राज्यसभा का सदन के कार्य व्यवहार को चलाने के लिए नियमों का निर्माण किया है। दोनों सदनों की कार्य प्रणाली लगभग समान है, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। नई संसद का आरंभ तथा सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना, बिगिनिंग ऑफ न्यू पार्लियामेंट एंड ओथ मेकिंग बाय मेंबर्स। संविधान की धारा 99 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदस्य निश्चित दिन तथा निश्चित समय संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त व्यक्ति के सामने संविधान के प्रति वफादारी तथा देश की प्रभुसत्ता तथा अखंडता को बनाए रखने की शपथ ग्रहण करता है। स्पीकर का चुनाव, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता सदन का सबसे सीनियर सदस्य करता है। सदन के सदस्य शपथ ग्रहण करने के बाद स्पीकर का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। स्पीकर के चुनाव के बाद उस दिन की सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। सदन का अधिवेशन, सेशन ऑफ द हाउस। धारा 85 के अधीन सदन का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन के मध्य 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, परंतु भारत में संसद के साल में 3 अधिवेशन बुलाए जाते हैं। एक बजट अधिवेशन, बजट सेशन। यह अधिवेशन साधारणतः फरवरी में बुलाया जाता है तथा अप्रैल के अंत तक चलता है। 2. वर्षाकालीन अधिवेशन, मॉनसून सेशन। वर्षा ऋतु का अधिवेशन साधारणतः जुलाई या अगस्त में बुलाया जाता है तथा सितंबर तक चलता है। 3. शीतकालीन अधिवेशन, विंटर सेशन। यह अधिवेशन साधारणतः अक्टूबर में बुलाया जाता है तथा दिसंबर में समाप्त हो जाता है। संसद के अधिवेशन का उद्घाटन, इनॉगरेशन ऑफ सेशन। धारा 87 के अधीन आम चुनावों के बाद संसद के प्रथम अधिवेशन तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष पहले अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस बैठक में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, पढ़ता है। यह अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें सरकार की उपलब्धियों तथा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों का वर्णन होता है। यह अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा केवल पढ़ा ही जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अगले दिन धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित सरकार की नीतियों पर संसद की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। पेज 230। इस स्टेज में विपक्षी दलों को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूरा अवसर मिलता है। यदि सरकार की इच्छा के विरुद्ध राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई परिवर्तन हो जाता है या धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि इसको सरकार में अविश्वास माना जाता है। मार्च 2012 में भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों द्वारा, लेफ्ट पार्टीज द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स में अलग अलग 2 संशोधन प्रस्ताव पेश किए गए थे, जबकि दोनों प्रस्ताव सदन द्वारा रद्द कर दिए गए थे और इस तरह UPA 2 सरकार गिरने से बच गई थी। धारा 86 के अधीन राष्ट्रपति जब चाहे संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में भाषण दे सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भी भेज सकता है, जो सदन के सभापति द्वारा पढ़कर सुनाए जाते हैं। सदन की बैठकें, मीटिंग्स ऑफ द हाउस। सदन का सचिव सदन की बैठकों की तिथि तथा समय के बारे में सदस्यों को सूचित करता है। सदन की बैठकें साधारणतः दिन के 11 बजे शुरू होती हैं तथा शाम को 5 बजे समाप्त हो जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह समय बढ़ाया भी जा सकता है। सदन का कोरम। सदन की बैठक के लिए सदन के कुल सदनों का 1/10 भाग सदन में उपस्थित होना आवश्यक है। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर सदन की बैठक निलंबित कर सकता है। सदन का कार्यक्रम, बिजनेस ऑफ द हाउस। सदन के सभापति द्वारा सदन के नेता की सलाह से सदन का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। समस्त कार्यक्रम को दो भागों में बांटा जाता है, एक सरकारी कार्य गवर्नमेंट बिजनेस तथा दो प्राइवेट सदस्य कार्य प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस। सदन का अधिकांश समय सरकारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि सदन में पेश किए जाने वाले 90% से भी अधिक बिल सरकारी बिल होते हैं। प्राइवेट सदस्य बिलों पर विचार सप्ताह में केवल शुक्रवार अंतिम 2.5 घंटे के लिए ही किया जाता है। सदन की दिनचर्या, डेली रूटीन ऑफ द हाउस। सदन की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निश्चित किया जाता है तथा प्रश्नों के घंटे के बाद सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलाई जाती है। प्रश्नों की किस्में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों को 4 किस्मों में बांटा जा सकता है। एक, चिन्ह वाले प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस। इन प्रश्नों पर तारे स्टार का चिन्ह लगा होता है तथा इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों ने मौखिक रूप में देने होते हैं। दो, चिन्ह रहित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। इन प्रश्नों पर कोई चिन्ह नहीं होता तथा इन प्रश्नों के उत्तर मंत्रियों ने लिखित रूप में देने होते हैं। तीन, पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। प्रश्न के उत्तर के समय अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें पूरक प्रश्न कहा जाता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर मंत्री को बिना तैयारी के तथा बिना किसी प्रकार की अग्रिम सूचना के देने पड़ते हैं तथा इस समय संबंधित मंत्री की उपस्थिति तथा योग्यता का निरीक्षण किया जाता है। चार, छोटी सूचना वाले प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। साधारणतः प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन का सदन के सभापति को नोटिस देना होता है, परंतु किसी महत्वपूर्ण घटना या किसी विशेष विषय से संबंधित प्रश्न सभापति की स्वीकृति से 10 दिनों के नोटिस से पहले भी पूछे जा सकते हैं। इनको छोटी सूचना वाले प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न पूछने की शर्तें, कंडीशंस फॉर पुटिंग क्वेश्चंस। सदन का प्रत्येक सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, परंतु प्रश्न को स्वीकार करना या ना करना सदन के सभापति की इच्छा पर निर्भर करता है। सभापति प्रश्न को स्वीकार करने के लिए अग्रलिखित शर्तों का ख्याल रखता है। पेज 231। एक, 10 दिन का नोटिस दिया गया है या नहीं। दो, प्रश्न का संबंध एक विभाग के साथ होना चाहिए। तीन, प्रश्न में साधारणतः 150 से अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया होना चाहिए। चार, प्रश्न का संबंध सरकार के नियंत्रणाधीन आने वाले मामले के साथ ही होना चाहिए। पांच, प्रश्न में स्वयं ही उत्तर या उत्तर के लिए सुझाव नहीं दिया गया होना चाहिए। छह, प्रश्न का संबंध काल्पनिक स्थिति के साथ नहीं होना चाहिए। सात, प्रश्न द्वारा पूछा गया मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं होना चाहिए। आठ, प्रश्न द्वारा किसी मित्र देश का अपमान नहीं किया गया होना चाहिए। नौ, प्रश्न गुप्त मामलों से संबंधित नहीं होना चाहिए। आधे घंटे का वाद विवाद, हाफ एन आवर्स डिस्कशन। यदि कोई सदस्य पूछे गए प्रश्न के संबंध में अधिक जानकारी चाहता है तो वह सदन के सचिव को सूचना देकर आधे घंटे के वाद विवाद की मांग कर सकता है तथा ऐसी सूचना वाद विवाद की स्थिति से 3 दिन पहले दी जानी आवश्यक है। सदन का सभापति यदि मामले को महत्वपूर्ण समझता है तो वह वाद विवाद की आज्ञा दे सकता है। शून्यकाल, जीरो आर। भारतीय संसद की कार्यप्रणाली में शून्यकाल, जीरो आर का विशेष महत्व है। लोकसभा में प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर समाप्त होने और लोकसभा की नियमित कार्यवाही आरंभ होने के बीच के समय को जीरो आर कहा जाता है। इस समय के दौरान सदस्य पूर्व सूचना दिए बिना कोई भी महत्वपूर्ण मामला उठा सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। स्थगन प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व की तत्कालीन घटना पर विचार करने के लिए पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने की सूचना सदन के सचिव को दी जाती है तथा यदि सदन का सभापति स्थगन प्रस्ताव पेश करने की आज्ञा दे दे तो सदन की चल रही कार्यवाही को स्थगित करके संबंधित मामले पर विचार किया जाता है। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव किसी विशेष मंत्री या सरकार की निंदा अर्थात आलोचना करने के लिए पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव पेश करने की पूर्व सूचना सदन के सभापति को देनी पड़ती है तथा इस पर सदन के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने के लिए पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की पूर्व सूचना सदन के सभापति को देनी पड़ती है तथा इस पर सदन के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा विरोधी दल को सरकार की आलोचना करने का अवसर मिलता है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन। मंत्रिपरिषद का ध्यान देश या विदेश में हो रही किसी विशेष घटना की ओर खींचने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कटौती प्रस्ताव किसी मंत्री के वेतन कम करने या सरकार की इच्छा के विरुद्ध बजट में कटौती करने के लिए पेश किया जाता है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। स्मरण रहे 27 अप्रैल 2010 को लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बजट में तेल और डीजल के बढ़ाए गए मूल्यों में कटौती करने के लिए दो भिन्न भिन्न कटौती प्रस्ताव कट मोशंस प्रस्तुत किए गए थे जो उचित बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सके थे। परंतु कटौती प्रस्तावों पर करवाई गई बहस के दौरान विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का भरपूर अवसर मिल जाता है। व्यवस्था संबंधी प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यदि कोई सदस्य अनुभव करता है कि सदन की कार्यवाही निश्चित नियमों के अनुसार नहीं चलाई जा रही या नियमों को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा रहा तो वह सदन में व्यवस्था संबंधी प्रश्न पेश कर सकता है। व्यवस्था संबंधी प्रश्न स्वीकार कर लिए जाने पर व्यवस्था संबंधी कार्यवाही बदल ली जाती है। मतदान, वोटिंग ऑफ डिवीजन। सदन में किसी भी विषय पर बहस समाप्त हो जाने के पश्चात मतदान करवाया जाता है। साधारणतः सभापति द्वारा यह मतदान मौखिक वॉयस वोट करवाया जाता है। जो सदस्य इसके पक्ष में होते हैं, पेज 232, वे ऊंची आवाज में हां जी आए तथा जो विरुद्ध होते हैं वे ना जी नेज कहते हैं। यदि हां जी वाले सदस्य अधिक हैं तो प्रस्ताव पास समझा जाता है। यदि ना जी वाले सदस्य अधिक हैं तो प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है। यदि सदस्य सभापति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो सभापति निम्नलिखित ढंगों में से किसी एक ढंग द्वारा मतदान करवाता है। एक, बटन दबाकर, बाई प्रेसिंग द बटन। प्रत्येक सदस्य की सीट पर मत रिकॉर्ड करने के लिए बटन लगे होते हैं। यदि कोई सदस्य विषय के पक्ष में मत डालना चाहता है तो वह हां वाला बटन तथा यदि वह विरोध में मत डालना चाहता हो तो वह नहीं वाला बटन दबाता है तथा निर्णय दीवार पर लगे बोर्ड पर रिकॉर्ड हो जाता है। स्पीकर हां और नहीं वाले मतों की गणना के पश्चात निर्णय की घोषणा करता है। दो, मतदान पर्चियों द्वारा, थ्रू वोटिंग स्लिप्स। प्रत्येक सदस्य को एक मतदान पर्ची दी जाती है जिस पर वह पक्ष या विरोध में अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है तथा अपना मतदान नंबर डिवीजन नंबर लिखता है। बाद में पर्चियां इकट्ठी कर ली जाती हैं तथा पक्ष और विरोध में डाले मतों की गणना की जाती है तथा सभापति द्वारा परिणाम की घोषणा की जाती है। तीन, मतदान लॉबियों में इकट्ठे होकर, बाय गेटिंग टुगेदर इन लॉबीज। सदन के दोनों ओर मतदान के लिए लॉबियां बनी होती हैं। सभापति आदेश देता है कि विषय के पक्ष में सदस्य दाई ओर वाली लॉबी में तथा विरोध वाले सदस्य बाई ओर वाली लॉबी में इकट्ठे हो जाएं। इन लॉबियों में मतदान क्लर्क होते हैं जो मत सूची पर लॉबी में उपस्थित सदस्यों के मत नंबरों के सामने निशान लगा देते हैं। इसके पश्चात संबंधित अधिकारियों द्वारा पक्ष और विरोध में पड़े मतों की गणना की जाती है तथा सभापति परिणाम की घोषणा कर देता है। चार, खड़े होकर, बाय स्टैंडिंग। यह विधि बहुत साधारण है। सभापति सदस्यों को आदेश देता है कि जो सदस्य विषय के पक्ष में हैं वे खड़े हो जाएं। इस प्रकार खड़े हुए सदस्यों की गणना कर ली जाती है। इसके पश्चात विषय के विरुद्ध सदस्यों को खड़े होने के लिए कहा जाता है तथा उनकी गणना की जाती है तथा सभापति द्वारा परिणाम की घोषणा कर दी जाती है। मतदान के लिए अपनाई जाने वाली विधि का निर्णय सभापति द्वारा किया जाता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। सदन का सभापति सदन के आदर तथा सम्मान का संरक्षक होता है, इसलिए वह सदन की कार्यवाही निश्चित नियमों के अनुसार चलाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। संसद देश की सर्वोच्च तथा पवित्र संस्था होने के कारण इसके गौरव का ख्याल रखना सदन के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य भी होता है।